તારીખ 18/5/1996 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન નંબર 11 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન પ્રવચન નંબર 9
તો કુછ કરને કા રહેતા નહીં ફિર સમય કેસે ગુજરતા હોગા મેં કૃપા કરકે સમજાઈ દે મતલબ જ્ઞાની કી પ્રવૃત્તિ કેસે હોતી પૂરે દિન મેં વો કેસે પ્રવૃત્તિ કરતે વૈસે તો ઉનકી માન્યતા મેં વો કુછ કર સકતે નહીં ઇસકી માન્યતા હૈ કરતા બુદ્ધિ ખતમ હો ગઈ હૈ તો ફિર કેસે સમય કેસે નિકલતા હોગા ક્યા બાત હૈ સમાધાન પર કા કાર્ય કરતા કરને કા હોવે તો સમય વ્યતીત હોવે એસા નહીં प्रश्न पूछना पूछने वाले के अभिप्राय में जो बात थी वो कर दिया। प्रश्न पूछने वाले के अभिप्राय में ऐसी बात है कि हम तो मानते हैं कि पर का कार्य कर सकते हैं, इसलिए हमको रस आता है और हम बहुत से कार्य करते हैं, जबकि ज्ञानी को तो ऐसा है ही नहीं, तो फिर उसको क्या होता होगा? પર કા કાર્ય કરને કા હોવે તો સમય વ્યતીત હોવે એસી વાત નહીં હૈ, સ્વકાર્ય મેં ભી સમય વ્યતીત હોતા હૈ, હો સકતા હૈ, રસ આતા હૈ વહાં સમય વ્યતીત હો જાતા હૈ, ચાહે કાર્ય સ્વ કા હો, સ્વ સંબંધિત હો, ચાહે કાર્ય મેં પરિણામ પર સંબંધિત હો, હું તો પરિણામ પર સંબંધિત હૈ, પર સંબંધિત પરિણામ મેં રસ આયે યા સ્વ સંબંધિત પરિણામ મેં રસ આયે, સમય તો વ્યતીત રસ આને સે હો હી જાતા હૈ, રસ નહીં આતા હૈ તો સમય નિકાલના મુશ્કેલ હોતા હૈ। સમ્યક દ્રષ્ટિ કો અંતર મેં નાયક કી પરિણતિ પ્રગટ હો ગઈ હૈ, मैं नायक मात्र हूँ ऐसी परिणति प्रकट होकर के चालू है। ज्ञाता की धारा चलती है, ज्ञातापने रूप धारा धारावाही परिणमन चलता है, उसको तो प्रतिक्षण उसको तो प्रतिक्षण पुरुषार्थ की डोरी चालू है, प्रति समय पुरुषार्थ अंतर का चल रहा है, साधना की पर्याय होती है, प्रतिक्षण साधना के स्वरूप को साधते हैं वो, प्रतिक्षण जो विभाव आता है उससे छुट्टा उससे अलग उससे भिन्न होकर के नायक की धारा नायक की परिणति पुरुषार्थ की दूरी प्रतिक्षण चालू ही है, सहज ज्ञाता धारा चल रही है। क्या कहते हैं तो क्या प्रवृत्ति करते हैं? अंतरंग प्रवृत्ति करते हैं। अंतरंग में क्या प्रवृत्ति करते हैं कि वेद ज्ञान चलता है, सहज आत्म साधना चलती है ज्ञान धारा में, और कर्म धारा में जो भी विभाव आता है वो तो विभाव से भिन्नपना रूप पुरुषार्थ चलता है, प्रतिक्षण वो कार्य उनका चालू है, इसलिए वो निकम्मा बैठा रहना पड़ता है ऐसे कोई बात नहीं है कि चलो सम्यक दृष्टि को तो कोई काम नहीं, निकम्मे हो गए अब उनके समय कैसे जाता होगा, ऐसा नहीं है। उनको बहुत कम है, उसको पूर्ण होने का बहुत कम बाकी है। पूर्ण होने में तो बहुत बाकी है क्या नहीं है, तो इसलिए पूर्ण होने के लिए उसका पुरुषार्थ काम चलता है। केवल ज्ञान प्रकट करने वाला है, जहां तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा उसका सम्यक दर्शन रूपी सुदर्शन चक्र विभाव के सामने लड़ता रहेगा और विभाव को हराता रहेगा, कर्म की सेना को भगाता रहेगा। वो सब काम है, बहुत विस्तार से उत्तर दिया है प्रश्न का, काफी विस्तार से प्रश्न उत्तर दिया कि ज्ञानी पूरा दिन क्या करते होंगे। आत्मा का निवृत्त स्वभाव है, क्या करते होंगे कि आत्मा का तो निवृत्त स्वभाव है, वो विभाव में या बाहर का कुछ करे, विभाव में कुछ करे या बाहर का कुछ करे तो उसका टाइम पास हो जाए, समय व्यतीत हो जाए, ऐसा नहीं है। बाहर में करना कुछ होवे तो समय निकले ऐसा नहीं है, या विभाव करना होवे तो समय निकले ऐसा भी नहीं है। अंतर का कर्ता कर्म क्रिया आत्मा में है, आत्मा का परिणाम तो चालू ही है, खुद आत्मा करता है, परिणति की परिणाम बदलता है वो क्रिया है, कार्य होता ही रहता है वो कर्म है, शुद्ध कर्म है, शुद्ध कार्य। यह बाहर का कुछ कर सकते ही नहीं, मेरा कार्य क्षेत्र की मर्यादा मेरे परिणाम में समाप्त होती है, मैं बाहर में कुछ कर सकता नहीं, मैं दूसरे का कर सकता हूं ऐसा मात्र अभिमान जीव ने अज्ञान से किया है। क्या बात कही कि मैं दूसरे का कार्य कर सकता हूं ऐसा मात्र अभिमान है, कर नहीं सकता, अहम भाव अहंकार रस वो अज्ञान से किया है, ऐसा मानने वाला भी नहीं कर सकता। मैं दूसरे का कार्य करता हूं ऐसा मानने वाला कर सकता है तो बात नहीं है, वो तो अज्ञान से अभिमान किया है। ज्ञानी ने अंतर में आत्मा की स्वरूप परिणति की क्रिया का कार्य चालू है, ज्ञानी को अंतर में आत्मा की स्वरूप परिणति की क्रिया का कार्य चालू ही है, वो क्रिया चालू है, अंदर में स्वरूप आश्रित परिणमन की क्रिया चालू है, उसमें वो व्यस्त है, उसमें वो व्यस्त है, अपने कार्य में ज्ञानी व्यस्त है, उनको फुर्सत नहीं है, उनको दूसरे का काम करने का कोई फुर्सत है ही नहीं। प्रतिक्षण भेद ज्ञान की धारा चालू ही है, प्रतिक्षण भेद ज्ञान की धारा तो चालू ही है। कभी 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 विकल्प छूट करके, कभी कभी विकल्प छूट करके स्वानुभूति प्रकट होती है, वो स्वानुभूति मैंने निर्विकल्प उपयोग, परिणति निरंतर चालू है, वेद ज्ञान निरंतर चालू है, कभी कभी शुद्धोपयोग में भी आते हैं। परंतु वेद ज्ञान की धारा तो चालू नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं हो, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग हो तो भी वेद ज्ञान की धारा तो चालू ही है। शुभ उपयोग के काल में भी है और अशुभ उपयोग के काल में भी है। खाते पीते यानी खाते वक्त, कुछ पीते वक्त, सोते वक्त, अरे स्वप्न में भी कुछ एक नायक की धारा तो चालू ही है। आत्म जागृति बिल्कुल रहती है, आत्म जागृति का नाश होता कभी उस विषय का अनुभव नहीं है, इसलिए लगे कि ये कैसे होता होगा। जैसे हम सो जाते हैं वैसे ज्ञानी भी सो जाते हैं, निंदर में तो फर्क नहीं दिखता, फिर उनके ज्ञाता धारा कैसे चलती होगी। तो आपको प्रश्न पूछते हैं कि आप मनुष्य है, मैं फलाना फलाना पुरुष हूं, ये निंद्रा में चालू रहता है कि नहीं रहता है, कि भूल जाता है कि मैं फलाना हूं। अगर भूल जाता होता हो तो कोई उसको जगाता है, फलाना भाई पूछिए, कैसे उड़ जाता है। मैं फलाना हूं ऐसी सभान दशा रहती है, क्या रहती है कि नहीं रहती। तो इससे कुछ अधिक मैं नायक आत्मा हूं ऐसी धारा, ऐसी ऐसी सभानता निंद्रा में भी चालू रहती है, वो छूटती नहीं। निंद्रा में वो भूल नहीं जाते, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं फलाना फलाना मनुष्य हूं इसलिए सो गया हूं, ऐसा होता नहीं है। जो भान हुआ वो भान चालू रहता है, वो भान भूलता नहीं है। भान से स्वभाव परिणाम 710 नंबर का पद कृपा रोज ने लिखा, भान होने पर स्वभाव परिणाम ही है, सहज स्वभाव परिणाम। जैसे कोई दूसरे के घर में मेहमान होकर के जाता है, वहां सो जाता है तो क्या वो भूल जाता है कि मैं मेहमान हूं, ऐसा भूल जाता है। सब उनकी जो प्रवृत्ति है वो मेहमान के स्वभाव अवस्था में रहेगी, ठीक है। जैसे कोई लड़की अपने पिता के यहां तो पुत्री थी, माता पिता का, और शादी होकर के ससुराल में बहू बन करके जाती है तो सो जाती है तो क्या बहू मिट जाती है क्या निंद्रा आने से। निंद्रा में भी बहू हूं उसका चालू रहता है, और अपने माता पिता के वहां जाती है, वहां सोती है तो मैं वहां पितरी हूं ऐसा चालू रहता है निंद्रा में भी। परिणाम कैसा पलटता है, निश्चय पलट गया परिणाम पलट गया, निर्धार निश्चय पलट गया तो परिणाम पलट जाता है। ऐसे मैं आत्मा हूं ऐसा निश्चय होकर के स्वानुभव हो गया, निश्चय होकर के स्वानुभव हो गया बस वो चालू रहता है। प्रगाढ़ परिणाम है ये, आत्म विषयक एकदम प्रगाढ़ परिणाम होते हैं तब अनुभव आता है। आत्मरस की प्रगाढ़ता में स्वानुभव होता है, ऐसे नहीं होता है, उस परिणति भी तब होती है, इतना रस होता है तब। इसलिए वो निंद्रा में भी चालू ही है, स्वप्न में भी चालू है, बाकी तो वह गृहस्थाश्रम में है, इसलिए बाहर के कार्य में जुड़ता भी है। जैसा भी देखो, नौकरी करता हो तो नौकरी, मजदूरी करता हो तो मजदूरी, और सेठ श्रीमंत हो तो अपना कारोबार, राजा हो तो राजकाज, जो भी है जैसा उदय है तो उसके उदय के अनुसार बाहर के कार्य में जुड़ता है, परंतु उसकी ज्ञाता धारा चालू है, उस वक्त भी ज्ञाता धारा तो चालू ही रहती है। कृपाल देव गृहस्थाश्रम में व्यापार करते थे, बाजार में जाते थे, गद्दी पे बैठ करके व्यापार करते थे, लेकिन ज्ञाता धारा यहाँ उपाधि में समाधि है। क्या लिखते हैं कि उपाधि में भी बाहर में उपाधि है, अंदर में समाधि है, आत्म समाधि में आत्म शांति, ज्ञाता धारा में समाधि की आत्म शांति बरसती है। परंतु उसकी ज्ञाता धारा चालू है, बाहर से कार्य करते हुए दिखते हैं, बाहर से तो कार्य करते हुए दिखते हैं, परंतु अंतर से तो नायक ही रहते हैं। बाहर में कार्य करते हुए दिखते हैं, अंतर में नायक रहते हैं, में नायक कुछ कर सकता नहीं। तो मुमुक्षु की भूमिका में प्रैक्टिस होती है, अंतरावलोकन से प्रैक्टिस चालू होती है कि मेरा कार्य, मेरा कार्य क्षेत्र मेरे भाव तक है, मेरे भाव से आगे मेरा कोई कार्य क्षेत्र है। ये प्रैक्टिस बहुत चलने के बाद वेद ज्ञान होता है, वेद ज्ञान होने के बाद स्वरूप निश्चय होता है, स्वरूप निश्चय के बाद वेद ज्ञान सहज चलता है, तो स्वानुभव होता है, फिर ज्ञाता धारा चालू रहती है। बाहर में कार्य करते हुए दिखते हैं, अंतर में नायक भाव में चलते हैं, नायक भाव में चलते हैं, बराबर चलते हैं नायक भाव। अंतर में नायक हो गए और पर का कर्ता नहीं है, इसलिए उसका समय व्यतीत नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अंतर में नायक हो गए और बाहर में तो पर का कर्ता होता नहीं नायक होने से, इसलिए समय व्यतीत होने का कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विभाव के कार्य में जुड़ते हैं तो ही समय व्यतीत होता है, ऐसा भी नहीं है। विभाव का कार्य करो तो समय चला जाए और स्वभाव का कार्य करो तो समय नहीं जाए, ऐसी कोई बात है कि ऐसा है नहीं। विभाव का कार्य में जुड़ना यह तो आकुलता है, तो आकुलता है। अंदर में निवृत्तिमय और शांतिमय परिणति में ही उसे सुख लगता है, अंदर में शांत शांत परिणति है, उसमें वो सुखी है। चैतन्य रस आता है, रस आता है, समय चला जाता है, समय कहाँ जाता है, ये पिक्चर सिनेमा टीवी देखते कि नहीं, रस आता है तो कितना समय निकल गया पता नहीं चलता। ऐसे जहां भी रस आवे समय निकल जाएगा, यानी को ज्ञान रस आता है, यानी को आत्म रस आता है, समय निकल जाता है। सर्वार सिद्धि के देव वो भी सभी समीर दृष्टि है, वहां खाना पीना नहीं है, वहां खाना पीना नहीं है इसलिए सोना भी नहीं है, और वहां कोई व्यापार व्यवसाय नहीं है, नौकरी धंधा नहीं है, और वहां कोई कुटुंब परिवार नहीं है, वहां सर्वार सिद्धि के देव को देवियां नहीं होती, वो सब नीचे होता है, कुछ नहीं है, सब सम्यक दृष्टि, सभी क्षायक सम्यक दृष्टि, मुनि दशा के बाद तो वो पद में जाते हैं, और किसी किसी के ऊपर वाले ने पुण्य में, सबके पुण्य सरीक है, इसलिए मैं इससे हीन हूं वो बात वहां नहीं होती, ईर्षा नहीं होती, मात्सर्य नहीं होता, सब एक दर्जे के होते हैं, इसलिए उनको अहम इंद्र कहते हैं, सब इंद्र कि कोई किसी का ऊपर नहीं, और सब धर्मात्मा है, इसलिए सब इकट्ठा होकर के धर्म चर्चा करें। कितने काल तक? 33 सागर मैंने अरबों के अरबों वर्ष, असंख्य अरब वर्ष, असंख्य के असंख्य अरब वर्ष समय व्यतीत होता है कि नहीं होता है? हो जाता है, धर्म चर्चा पूरी नहीं होती, चर्चा पूरी क्या कहा? अंदर में निवृत्तिमय, निवृत्ति में तो बाहर की प्रवृत्ति का विकल्प नहीं, अंदर में बाहर की प्रवृत्ति का विकल्प भी नहीं, और शांतिमय परिणति, परम शांत अमृतमयी शांति, सुधारस जिसको कहते हैं, अमृतमयी शांति, उस परिणति में उनको सुख चैन है, बहुत सुखी है। बाहर में कहीं भी सुख लगता नहीं है, कोई चीज में सुख नहीं लगता, सुख दिखता ही नहीं है, ही नहीं इसलिए नहीं दिखता है, तो लगता नहीं है कि बाहर में सुख है नहीं इसलिए लगता नहीं है, दिखता भी नहीं है तो लगे कैसे? जब सुख दिखता नहीं तो लगे कैसे? वो बात क्या? अविरत सम्यक दृष्टि के। अब थोड़ी मुनि की बात करते हैं कि मुनिराज अंतर में तो अकर्ता है ही, जो मुनि है मुनि दशा में आए हैं वो तो अंतर में अकर्ता है ही, परंतु बाहर का भी सब छूट गया है, सभी उदय संसार के छूट गए, उस प्रकार के कर्म खत्म कर दिए गृहस्थ अवस्था में, वो उदय उस प्रकार का पूरा हो गया, अब मुनि योग्य उदय रहा है, गृहस्थ के योग्य कोई उदय उनको नहीं है, मुनि के योग्य पंच महाव्रत का पालन, 28 मूल गुण का पालन, फिर भी शास्त्र में आता है कि मुनियों को कुछ अशरण नहीं है, ये समय में आता है, किसी को प्रश्न हो गए, देखिए सम्यक दृष्टि तो गृहस्थ आश्रम में थे, कुछ बाहर के कार्य में जुड़ते भी थे, चलो इसका समय निकल जाता था। अब मुनि तो निवृत्त हो गए, कोई काम नहीं उसके जुम्मे, कोई काम रखते भी नहीं अपने जुम्मे, कोई काम की जुम्मेवारी लेते भी नहीं, फिर उसका समय कैसे निकलता होगा? कि उसको आत्म कार्य में बहुत लगन से काम होता है, कुछ अशरण नहीं है, कार्य मिले तो शरण वरना शरण नहीं, ऐसी बात नहीं है। आश्रय है किसका? आश्रय है, आश्रय नहीं है ऐसी बात नहीं है, आश्रय है। सर्वार सिद्धि के देव निरंतर इतने आत्मानुरक्त रहते हैं, फिर भी उनका गुणस्थान क्यों नहीं बढ़ पाता है, पुरुषार्थ नहीं बढ़ता है क्या? आत्मानुरक्त रहते हैं वो बात बराबर है, लेकिन उपयोग बाहर जाता है तो धर्म चर्चा कर लेते हैं, धर्म चर्चा बहुत होती है, परंतु उतना पुरुषार्थ नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषार्थ बढ़ना ये कोई दूसरा फैक्टर है, धर्म चर्चा करना ये कोई दूसरा फैक्टर है। थोड़ा सूक्ष्म बात पड़ेगा, ये बात थोड़ा सूक्ष्म पड़ेगा। देखिए धर्म चर्चा में भी उपयोग बाहर जाता है, शास्त्र स्वाध्याय में भी उपयोग बाहर जाता है, और उपयोग बाहर जाता है तो क्या होता है, साधना होती है क्या? उपयोग बाहर जाता है वो ज्ञानावरणी को ले आता है, वो कोई स्वाध्याय करने से या धर्म चर्चा करने से पुरुषार्थ बढ़ता है वो बात गलत है। क्या वो बात गलत है? पुरुषार्थ साधक सम्यक दृष्टि मुनि कोई भी हो, पुरुषार्थ स्वतंत्र रूप से जीव अंदर में स्वरूपाश्रय से करता है, पराश्रय से पुरुषार्थ नहीं होता, स्वरूप का आश्रय से पुरुषार्थ होता है, और वो स्वरूप का आश्रय जीव स्वतंत्र करता है, उसमें कोई विकल्प की मदद की जरूरत नहीं है। वो तो विकल्प तो उसको प्रति उसको दीवार खड़ा कर देता है अनुभव में, आकुलता है। आया अपनी 144 गाथा में आकुलता वाली बुद्धि हूँ, मति ज्ञान की बुद्धि और शुद्ध ज्ञान की बुद्धि आकुलता उठ जाती है, आया कि नहीं आया? तो पुरुषार्थ और स्वतंत्र चीज है। सर्वार सिद्धि के देव चतुर्थ गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ते। ऐसा है बाहर में उगाड़ बढ़े, अंतर की बात कोई और है। निरावरणता स्वरूप का आश्रय परिणाम करे तब परिणाम निरावरण होते हैं। सिद्धांत वो है, उपयोग बाहर निकला आवरण को प्राप्त हो गया, जिसके जितने अनुपात में जाएगा उतना वो हिसाब किताब करना नहीं हो पा रहा, सूक्ष्म हिसाब किताब निर्ग्रह था नहीं, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान के योग्य, न पंचम गुण स्थान के योग्य न मुनि के योग्य। इसलिए मालूम है तीर्थंकर देव मुनिराज को ऐसा उपदेश देते हैं कि हे मुनि, तुम केवल ज्ञान लेने को निकला और जब मुनि दीक्षा अंगीकार की तब तुमने पचकान दिया था, भूल गया क्या? कौन सा पचकान दिया था? कि मैं निरंतर शुद्ध उपयोग में रहूंगा। अब तो निरंतर शुद्ध उपयोग में रहता नहीं है, बार बार छठे गुण स्थान में आ जाता है पवित्र दिशा में। देख, अगर आयु पूर्ण हुआ उसके पहले तुम लगातार शुद्ध उपयोग में नहीं रहा और केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, तुमको चतुर्थ गुण स्थान में जाना पड़ेगा। दूसरा तो इलाज नहीं, देव होना पड़ता है, मनुष्य तो हो सकते नहीं, देव में चले जाते, देव में चतुर्थ गुण स्थान से आगे कोई परिस्थिति सारे देवलोक में नहीं है। चाहे वैमानिक देव हो चाहे सर्वार सिद्धि का देव हो, उगार बढ़ता है सर्वार सिद्धि के, उतनी सूक्ष्म चर्चा उतनी सूक्ष्म चर्चा करते हैं कि एक विषय की चर्चा रिपीटेड नहीं करते, पुनरावर्तन नहीं करते, सूक्ष्म चर्चा करें तो भी उघार बाहर का बढ़े, अंतर में स्वरूप ग्रहण करने की शक्ति चतुर्थ गुण स्थान तक की है, पंचम गुण स्थान वाली भी स्वरूप ग्रहण शक्ति की शक्ति महा नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि मुनि पद में आए तो भी उन्होंने केवल ज्ञान लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? कि प्रमद गुण स्थान में बार बार आकर के प्रमाद का सेवन किया। क्या किया? इसलिए उसको प्रमद गुण स्थान ऐसा नाम दिया है, वरना छठे गुण स्थान में निर्जरा, चतुर्थ गुण स्थान के शुभोपयोग से भी गुण श्रेणी है, मैंने मल्टीप्लीकेशन वाली है, स्क्वायर रूट वाली है, तो भी उसको प्रमाद कहते हैं, तो भी उसको, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं लेता, ऐसा नहीं चले, जाना पड़ेगा चतुर्थ गुण स्थान, बहुत बड़ा जंक्शन हो जाएगा लंबे काल तक, वहाँ आयुष बड़ा है। आज्ञा पालन नहीं किया, गुरु आ गया तो वो थे, दीक्षा देने वाले गुरु थे कि तुमको शुद्धोपयोग में रहना है निरंतर। रुक्षा भी ऐसा आता है कि दीक्षा पूरी होते ही ध्यान में बैठ जाता है, ध्यान में बैठते ही निर्विकल्प सप्तम गुण स्थान का शुद्धोपयोग में आरूढ़ हो जाता है। में रहने का उसका अभिप्राय है, फिर भी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से रह पाते नहीं है, तो छठे गुण स्थान में प्रमाद में आ जाते हैं। देखो मुनि दशा के वर्णन करते हैं बहन से, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, जब भी करते हैं बहुत काम कर दिया टिकावतार होने का, बहुत काम कर दिया। बाहर में पंचमाव्रत के परिणाम शुभ है, उनसे भी उनकी उसकी परिणति भिन्न रहती है। पंचमाव्रत के परिणाम, समिति गुप्ति के परिणाम अपनी ज्ञाता धारा भिन्न रहती है, उससे छठा सातवां गुणस्थान में झुलने वाले मुनिराज प्रतिक्षण स्वरूप में लीन होते हैं, क्षण क्षण में स्वरूप में आ जाते हैं। चैतन्य गोला छुट्टा, एक क्षण में चैतन्य गोला छुट्टा अंदर में। ऐसे मुनि कुछ अशरण नहीं है, ऐसे मुनि कुछ अशरण, वहां तो शुद्धोपयोग की रमझट चलती है, फुर्सत नहीं है, बात करने की भी फुर्सत नहीं, उपदेश देने की भी फुर्सत नहीं है। कभी कभी शास्त्र लिखते हैं तो अंदर डूबते डूबते लिखते हैं, वो भी लगातार उपयोग शास्त्र में रहता, उपदेश दे रहे तो भी लगातार उपयोग नहीं रहता, खाते हैं लगातार उपयोग नहीं रहता, अरे सो जाते हैं लगातार उपयोग नहीं रहता, क्षण क्षण में अंदर चले जाते हैं, प्रतिक्षण अंदर में चले जाते हैं। इसलिए वो ऐसे मुनि कुछ अंदर में शरण नहीं है, उसको आत्मा का शरण प्रकट हुआ है, उनको आत्मा का शरण प्रकट हो गया है, भगवान आत्मा का शरण है उसको, चैतन्य देव का स्मरण शरण है उसको, चैतन्य देव का शरण मिला, बाहर का शरण तो शरण ही नहीं है, वो तो अशरण है। मुनि को पूरे दिन कैसे गुजरता होगा, मुनि का पूरा दिन कैसे गुजरता हो, अरे वो रात को निंद्रा नहीं लेते, इतना काम में लगे हुए हैं, निंद्रा लेने की भी फुर्सत नहीं है, कहते चार घंटा छह घंटा सो गया वो बात नहीं है, बहुत कम सोते हैं वो भी आधी रात के बाद, वो भी पूरा पूरी नींद नहीं लेते, अंदर उपयोग की रमझट चलती है, और उतना चैतन्य परिणति का करंट चलता है क्या, इतना करंट चलता है कि ठंडी गर्मी का भान नहीं रहता, और वो करंट सोने भी देता नहीं है, सोते भी नहीं, ऐसा चलता है अंदर में, अकेले जंगल में लेकिन मस्त है अपने करंट में, ज्ञानानंद में मस्त है। मुनियों को पूरा दिन कैसे गुजरता होगा, वो प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है, नॉनसेंस प्रश्न है ये उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्या बात करते हो, मुनियों को कैसा कैसा टाइम निकलता होगा, तुम मुनि का मुनि दशा को जानते नहीं है, जाओ, तो प्रश्न ही स्थान में है।
आपने
तो कुछ नहीं समझते, ऐसा प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है, वे तो शुद्धात्मा में लीन रहते हैं, वो तो शुद्धात्मा में लीन रहते होते हैं, और प्रचुर स्वसंवेदन पूर्वक आनंद का वेदन करते हैं। गुरुदेव एक दृष्टांत बहुत अच्छा बढ़िया देते थे मुनि दशा का, ये गर्मी के दिन में वैशाख चैत्र वैशाख में बहुत गर्मी होती है, 118 डिग्री, कितनी अभी कितनी चलती है, 107-8-9 चलती है, 112 में तो त्राही माम हो जाए, 112 डिग्री का धूप हो जाए ना, सहन करना मुश्किल हो जाए, लोग मरने लगे, प्राणी मरने लगे, लेकिन 118 डिग्री का जंगल में ताप होवे ने तो भी मुनिराज को अंदर में आत्म शांति, शीतल 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 शीतल, एकदम शांत शांत आत्म शांति। किस तरह से, के जैसे समुद्र में बाढ़ आती है उस तरह से, कि उतनी गर्मी में बाढ़ आती है कि नहीं आती है समुद्र में, है, कहाँ से आती है? क्या सूर्य की गर्मी बाढ़ को रोक सकती है, समुद्र के बाढ़ की? समुद्र तो मध्य बिंदु से उछलता है, कहाँ से उछलता है? अंदर से उछलता है। ऐसे आत्मा के मध्य बिंदु में से शांति का उफान आता है, बाढ़ आती है, उनको बाहर की प्रतिकूलता कोई रोक सकती? प्राण चले जाए ऐसा उपसर्ग आवे, परिश्रम आवे, केवल ज्ञान दे ले, श्रेणी मांड करके केवल ज्ञान ले ले। ऐसा नहीं कि उपसर्ग आया तो ध्यान में दखल होती है, वो बात नहीं है। जम गए सो जम गए, दुनिया दुनिया के घर पे रह गई, दुनिया के कोई चीज की, कोई प्रसंग की, कोई असर उनको पहुंचती तो मेरा कार्य क्षेत्र मेरे परिणाम में, दूसरे पदार्थ का कार्य क्षेत्र उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, मुझे कुछ होता नहीं, हो सकता नहीं, मैं मेरे स्वरूप में लीन हूँ। नहीं, निराधार नहीं है, शक्ति की चट्टान पर खड़े हैं, निराधार नहीं है, भगवान आत्मा का आधार लिया हुआ है। तो भगवान आत्मा हजार हाथ वाला नहीं है, अनंत हाथ वाला है, अनंत शक्ति है, एक हाथ में एक शक्ति गिना तो अनंत शक्ति वाला है। ऐसे मुनियों को कहते हैं कि नमो लोए सब साहुणम, ये मुनिराज का, ऐसे मुनिराज को वंदन है। मामूली लोग की बात नहीं है, नहीं है। मुनि दशा का वर्णन बहुत बढ़िया करते हैं, तो जैसे सामने खड़े हैं और लिखते हैं, ऐसे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब फिर समय दृष्टि की बात करते हैं।